हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 11 टेक्स्ट नंबर 55। आज के श्लोक में भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं, क्योंकि कल भगवान ने बताया था ना कि ये जो रूप मेरा देख रहे हो वो दान देने से, तपस्या करने से और बड़े बड़े अनुष्ठानों को सिद्ध करने से भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने 54 में बताया, भक्त्या तनन्यया शक्य अहमे वन विधोर्जुन, कि अर्जुन अगर आपको मुझे प्राप्त करना ही है तो फिर उसके लिए केवल अनन्य भक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही कृष्ण को उसी रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में वो अर्जुन के समक्ष खड़े थे और अर्जुन का साक्षात दर्शन कर रहा था वो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बोला इसके अतिरिक्त, यानी भक्ति के अतिरिक्त और कोई विधि है ही नहीं जिससे हम कृष्ण को समझ सकें, चाहे हम कितने ही बड़े ज्ञानी, तपस्वी, दानी या कुछ भी बन जाएं, लेकिन कृष्ण को समझने के लिए, कृष्ण को साक्षात्कार दर्शन करने के लिए हमें कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो रेस होता ही है कि भक्त कैसे होते हैं, कैसा भक्त बनना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण उसी क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आज के श्लोक में हमें बताते हैं, चैप्टर 11 टेक्स्ट नंबर 55। भगवान कह रहे हैं, मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तः संगवर्षितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। भगवान कह रहे हैं मत कर्म कृत, यानी मेरा कर्म करते रहता है, यानी कि कोई ऐसा मनुष्य जो सदैव मेरे लिए कर्म करता रहता है, यानी कृष्ण कर्म करता है। मत परम, मुझको परम मानते हुए, मत भक्तः, मेरी भक्ति में लगा रहता है, संगवर्जित, संगवर्जित बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है जिसमें इसका मतलब होता है सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से बिल्कुल मुक्त होता है। निर्वैरः, यानी किसी से वैर भाव नहीं रखता है, और किससे, सर्वभूतेषु, सारे सारे समान लोगों को समान भाव से रखता है, किसी से ना द्वेष रखता है और ना ही किसी में आसक्ति रखता है। यह समान ऐसा मनुष्य मुझको, मामेति, मुझे प्राप्त करता है, पांडव, हे पांडव पुत्र। अर्थात भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सत्काम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, यानी कि ऐसे कोई कार्य नहीं करता है जो कि सत्काम कर्म है, जिसके लिए उसे ये सोचना पड़े कि मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे इसका ये फल मिलेगा, या फिर मनोधर्म नहीं, भक्ति मीन्स जो कृष्ण की खुशी के लिए किया जाता है, बस वही। तो कृष्ण की खुशी क्या होती है? अब देखो, आपको अगर किसी कोई आपके घर पे आए और आप उसको खुश करना चाहते हो तो उसके लिए आप अपनी मर्जी नहीं चलाओगे कि मैं इसको ये खिलाऊं, वो खिलाऊं, वो खिलाऊं। आप क्या कहोगे कि भाई आप क्या, उसको क्या अच्छा लगता है, किसी से पूछोगे या उससे पूछोगे, या तो पहले उससे पूछोगे आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट से आपको नहीं बताएगा, तो अगर आपको उसे वाकई में खुश करना है तो जिसने पहले उसको खुश कर लिया है उससे पूछोगे कि ये किस तरह से खुश होता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें स्वयं बताते हैं भगवद्गीता में कि मैं कैसे खुश होता हूँ। आगे जब कल से हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने हद ही कर दी, हर चीज को एकदम ओपनली बताया है कि क्या करना है। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण पग पग पर हमें बताते रहे हैं कि मुझे किस तरह से खुश किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया कि सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है। अब कृष्ण के लिए कैसे कर्म करते हैं वो तो श्रील प्रभुपाद चैप्टर में बहुत ही सुंदर तरीके से बताएंगे। और आगे भगवान कह रहे हैं, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कुछ शर्तें रखी हैं कि अगर आपको मुझे प्राप्त करना है तो सकाम कर्मों और मनोधर्म से मुक्त होना पड़ेगा, भगवान की शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, कृष्ण के लिए कार्य करने पड़ेंगे और भगवान को जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। सारे दूसरे सारे गोल्स जो भी हमने अपने एम ऑफ लाइफ बना रखे हैं उनको हटा के कृष्ण प्राप्ति जो कि सर्वोच्च सिद्धि है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, उसी को अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, तभी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण ने अभी बातें कही हैं, वही उनको जब हम एक्सेप्ट करेंगे और उसी के ऊपर हम अपने जीवन को नव्यात करेंगे, तभी हम कृष्ण के चिन्मय व्योम यानी कि ऐसा धाम जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 6 में बताएंगे, न तद भासयते सूरयः न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। मेरा वह परम धाम उसको न सूर्य प्रकाशित करता है न चंद्रमा, वह स्वयं प्रकाशमान है। उसी के लिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं चिन्मय व्योम ऐसा धाम जहाँ पर जाकर आपको वापस कभी लौटना नहीं पड़ता। उसे प्राप्त करने के लिए हमें वही विधि अपनानी पड़ेगी जो कि कृष्ण ने कही है। अतः यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। यानी कि ये जो श्लोक अब हम पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 55 श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं सारभूत श्लोक है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो इन उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से जो लोग आजकल अपनी जिंदगी में सिर्फ जो भौतिक चीजें हैं उन्हीं को अपने जीवन का उद्देश्य समझ कर बैठे हुए हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। जब हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो हमें अपनी वास्तविकता पता चलेगी कि हम क्या हैं और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। भगवद गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवान के धाम को कैसे पहुँच सकता है। श्रीमद् भगवद गीता से ही हम समझ सकते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ किस तरह का संबंध स्थापित कर सकते हैं और भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हमें भक्ति किस तरह से करनी चाहिए और हम भक्ति योग में किस तरह से सफल हो सकते हैं वो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.2.55 में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते। बहुत ही सुंदर श्लोक है श्री रूप गोस्वामी के द्वारा रचित, अनासक्तस्य विषयान्। देखो जितने भी विषय होते हैं ना, जैसे हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं आंख कान नाक त्वचा रसना, उनके जो विषय हैं रूप रस गंध स्वाद स्पर्श, इन सब जैसे आंख का विषय है रूप और जिह्वा का विषय रस, शब्द विषय है कर्ण का और स्पर्श त्वचा यानी स्किन का, तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अनासक्तस्य विषयान्। जो अपने इन विषय इंद्रियों में कोई आसक्ति नहीं रखता निर्बंधः कृष्ण संबंधी, यानी कि वो कोई ऐसा कार्य ना करे जो कृष्ण का संबंध कृष्ण से संबंधित ना हो। युक्तम वैराग्यम उच्यते, वो कंटिन्यूस कार्य करता रहता है, ऐसा नहीं कि भक्त निष्क्रिय अनएक्टिव होते हैं, वो कंटिन्यूस वो भी बहुत काम करते हैं। उनका जीवन भी बहुत बहुत सारा मतलब व्यस्त होता है, ऐसा नहीं वो सारा दिन फ्री होते कुछ नहीं करते, लेकिन वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं हो। युक्तम वैराग्यम उच्चते, वही वैरागी हैं, यानी कि श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा कोई कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। अब देखो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ना, मत कर्म मत भक्त मुझको परम मानते हुए मेरे लिए कर्म करता है। श्लोक का फर्स्ट वर्ड देखिए, मत कर्म कृत, यानी कि भगवान ने कहा मेरा कर्म करने में रित। तो मेरा कर्म करने का क्या मतलब होता है कि ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। मत कर्म कहा ना कृष्ण ने, तो कोई भले ही कितने ही कर्म क्यों ना करे किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आसक्ति रखते हैं ना फल से तो वो कृष्ण कर्म नहीं हो जाता है, वह कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए हो जाता है। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे उस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणित करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह उसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है, यही कृष्ण कर्म है। यानी जो फल है ना, जो फल हमें मिलता है वो हमें कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, वही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन ना बनाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अच्छा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों का वर्णन अच्छा विग्रह की सेवा का प्रबंध कर सकता है, यह सब कृष्ण कर्म है। अब श्री प्रभुपाद जी कृष्ण कर्म को बहुत ही उत्तम तरीके से डिटेल से बता रहे हैं कि हम जो भी हमारे पास धन संग्रह हो उसे भगवान की सेवा में किस तरह से लगाएं। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए अपितु उसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं है। यानी कि आप बनाओ भगवान के लिए घर बनाओ, उसमें भगवान को स्थापित करो, आप ही रहो उसमें, लेकिन कृष्ण को इस भवन का स्वामी मानना चाहिए, यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता है, यानी कि किसी की अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है, फिजिकल फाइनेंशियली वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो मंदिर बनवा सके, तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग ही सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है, जिसके पास थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत में निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास थोड़ी सी भूमि होती ही है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। यानी कि आपके पास जो कुछ भी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा भी है तो उसमें आप भगवान के लिए थोड़ी सी जमीन में फूल उगा सकते हो। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। कब बताया था याद है ना, 9.26 में हमने एक श्लोक पढ़ा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयस्यति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। श्री प्रभुपाद उसी श्लोक को याद करते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में पहले ही कृष्ण ने तुलसी दल को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा सा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इसे इसी तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगाया जा सकता है। यानी कि श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, आपके पास जो कुछ भी है, यदि धन है, यदि धन से आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप फिजिकली भगवान की सेवा कर सकते हो। और इस कलयुग में तो सबसे अच्छी सेवा क्या है पता है, आप नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, ये सबसे अच्छा कृष्ण मत कर्म जो कृष्ण ने कहा है ना मेरे लिए, भगवान कथाओं का श्रवण करना और भगवान के कीर्तन में भाग लेना प्लस भगवान के नाम का जप करना, ये सबसे सुंदर कृष्ण कर्म है। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा मत कर्म कृत मत परमो, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं मत परमो शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। मत परमो का मतलब बताया ना, मुझे परम मानता है, तो उसका लक्ष्य केवल ये होता है कि मैं किस तरह से कृष्ण को प्राप्त करूं। ऐसा व्यक्ति चंद्र सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतम लोगों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक भी जाने का इच्छुक नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें 8वें अध्याय में बताया था ना, अब्रह्म भुवना लोक का पुनरावृत्ति नो अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने 8.16 में कहा था यदि तुम सबसे उच्चतम लोक ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे तो भी तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो फिर जो भक्त होते हैं जो कृष्ण से प्रेम करते हैं वो ऐसी जगहों पे जाने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती है, उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने की रहती है। क्यों? कृष्ण ने कहा माम उपैत्यते कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो भक्त होते हैं वो सदैव चाहते हैं कि मैं कृष्ण की संगति करूं ताकि मुझे बारंबार इस दुखालय संसार में वापस नहीं आना पड़े। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता। जैसे हमने पहले भी बताया था कि वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमामेति भगवान इति शब्द थे। कुछ लोग भगवान को ब्रह्म मानते हैं, कुछ परमात्मा और कुछ भगवान, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें ब्रह्म में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सायुज्य मुक्ति को बिल्कुल भी ना एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है जिसे कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन धाम कहते हैं, उसे उस लोक का पूरा ज्ञान देता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं चाहता, जैसा कि मद भक्त शब्द से सूचित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज किए, कृष्ण का एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देखो श्लोक में लिखा है मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त, जो मेरा भक्त है वो मेरे अतिरिक्त और किसी की तरफ आकर्षित नहीं होता, वह भक्ति में पूर्णतया रत होता है। विशेष रूप से वह श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम और आत्मनिवेदनम यानी भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है अथवा 8वें 7वें नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह ही सकता है, तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण के श्लोक का पहली लाइन का लास्ट वर्ड संगवर्जित मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित, श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं संगवर्जित शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ दे जो कृष्ण से विरोधी हैं। देखो श्री प्रभु चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा आप बताइए केनो वैष्णव का क्या आचरण है, तो चैतन्य महाप्रभु ने एकदम फटाक से जवाब दिया असत्य संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव के आचरण में पहली बात यही है कि वो ऐसे लोगों का संग बिल्कुल नहीं कर सकते जो असत है। असत का मतलब देखो कृष्ण तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, खाली कृष्ण ही सच्चा है और कृष्ण के अतिरिक्त संसार में सब माया है। तो जो कृष्ण को नहीं प्रेम करते, जो कृष्ण से कोई रिलेशन नहीं रखते, जो कृष्ण के भक्त नहीं है, तो फिर हमें उनके साथ कोई रिलेशन, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी बताते हैं श्री रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में बताते हैं जनसंगस्य यानी कि ये जो दूसरे लोग होते हैं ना जो कृष्ण के भक्त नहीं होते हैं उनके साथ यदि आप संग करोगे तो फिर निश्चय ही आपकी भक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। तो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ दे जो कृष्ण के विरोधी हैं। ना केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरोधी रहते हैं, अपितु वे भी जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। इसलिए रूप गोस्वामी का श्लोक है जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने लिखा है। इसमें आपको पूरा का पूरा रूप गोस्वामी बताते हैं कि आखिर भक्ति का मतलब क्या है। स्वरूप गोस्वामी कह रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, और हर टाइप की समस्त जो अभिलाषा है, आकांक्षा है, जो इच्छाएं हैं, शून्यम का मतलब होता है खत्म हो जाए। कौन सी? ज्ञान कर्मा ध्यानावृतम, चाहे वो ज्ञान हासिल करने की हो, चाहे सकाम कर्म की हो, या कुछ और इच्छा हो, वो सारी इच्छाओं को समाप्त करके आप कर्म। फिर कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि हम कर्म करें क्यों? यदि देखो, फल का ज्ञान ही तो मनुष्य को कर्म कराता है। यदि फल में कोई आसक्ति ही नहीं तो मनुष्य कर्म करेगा क्यों? जैसे हम खाते हैं किस लिए? ताकि हमें तृप्ति हो। सोते हैं किस लिए? ताकि उसका फल मिलेगा, हम रिलैक्स हो जाएंगे। पढ़ते हैं किस लिए? ताकि डिग्री मिलेगी। कोई भी कार्य, व्यापार में जाते हैं किस लिए? ताकि हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि फल का ज्ञान ही तो कृष्ण मनुष्य से कर्म कराता है, लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ध्यानावृतम, फिर कर्म करें क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो श्लरूप गोस्वामी सेकंड लाइन में बहुत ही सुंदर तरीके से देते हैं। श्लरूप गोस्वामी कहते हैं, अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। आप कर्म इसलिए करो क्योंकि आप कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हो। यानी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इस श्लोक में, श्री रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कर्म से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कर्म से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। अनुकूल्यस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम्, बहुत ही सुंदर शब्द है हरि भक्ति विलास 11.676 में। अनुकूल्यस्य संकल्प, यानी कि जो कृष्ण भक्ति में अनुकूल हैं, जो आपकी कृष्ण भक्ति में सहायता कर रहे हैं, प्रगति करने में आपकी सहायता कर रहे हैं, संकल्प वही कार्य करो। और जो कार्य प्रतिकूलस्य, जो कृष्ण भक्ति में आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, उन्नति में आपका साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे कार्य प्रतिकूल उनको बोलते हैं। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो कार्य करने से आपको ऐसा लगता है कि आपकी भक्ति नहीं बढ़ रही है, वो कार्य वर्जनम, ऐसे कार्यों को आप एक सेकंड में त्याग दीजिए। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे। मतलब कुछ लोग कृष्ण के लिए कार्य तो कर, मतलब कृष्ण के बारे में सोचते हैं, लेकिन अनुकूलस्य का मतलब होता है कि आप कृष्ण के प्रति प्रेम से कार्य करो, प्रतिकूल भाव से नहीं। जैसे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता था, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता था। वो कंटिन्यूअस कृष्ण के बारे में सोचता था, खाते हुए, सोते हुए, पानी पीते हुए, हर वक्त उनको ऐसा लगता था कृष्ण है कृष्ण। इतना सोचता था कृष्ण के लिए, इतना कृष्ण का चिंतन करता था, इतना कि हम भक्त भी नहीं करते हैं। इस तरह सोते जागते काम करते वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहता था, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल ना थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह भक्त नहीं माना जाता, उसे क्या कहते हैं? असुर ही माना जाता है, और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए जाने गए व्यक्ति को तुरंत ही मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। यानी कि यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि कृष्ण के संबंध में यदि आप शत्रु भाव से भी आते हो तो मोक्ष तो यूं मिल जाता है। मोक्ष कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट तो होता है कृष्ण प्रेम, जो केवल शुद्ध भक्तों को ही मिल सकता है जो कृष्ण अनुकूल ढंग से कृष्ण की भक्ति करते हैं। वह सर्वोच्च लोक गौलोक वृंदावन ही नहीं जाना जाए। यानी कि यहाँ कृष्ण प्रभुपाद जी और अच्छी बात बता रहे हैं कि जो भक्त होते ना शुद्ध भक्त, वो तो सर्वोच्च लोक यानी गौलोक वृंदावन में भी नहीं जाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य केवल एकमात्र यही होता है कि हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, चाहे वह जहाँ भी रहे। यानी कि जहाँ कृष्ण है हम वहाँ जाना चाहते हैं, हमें बस कृष्ण का सानिध्य चाहिए, कृष्ण को देखते रहें, कृष्ण से प्रेम करते रहें और कृष्ण के साथ रहें, फिर वो चाहे जहन्नम ही क्यों ना हो। क्योंकि भक्त अपने आप को बस एक ही उसकी एक ही इच्छा होती है कि वो कृष्ण का सानिध्य। जैसे याद है मैंने आप लोगों को कल एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें गोपियों को वो वृंदावन धाम लेकर गए थे, लेकिन वहां पर उन्होंने जाकर कहा अरे ये कृष्ण कैसा है जिसके साथ ना प्रेम कर सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना वार्तालाप कर सकते हैं, चार पड़े उस वैकुंठ को जहाँ कृष्ण प्रेम नहीं हुए। भक्त हमेशा खुद को पतित मानता है और पतित मानते हुए वह यह रियलाइज करता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं परम धाम में जाऊँ, मैं भगवान के धाम में जा, मैं तो इतना अपराधी हूँ। इसलिए भगवान से पता है कैसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं जानता हूँ कि मेरे काले करतूतों की वजह से मैंने इतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं कि मैं आपके परम धाम को वापस से प्राप्त करूँ। यदि मुझे वापस जन्म लेना ही है और आपने यदि मुझे मनुष्य का जन्म दिया तो मुझे वृंदावन में ग्वाल पाल बना देना ताकि नित्य निरंतर आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। पर प्रभु मैं जानता हूं कि मैंने तो इतने पाप किए हैं कि मैं मनुष्य बनने के भी योग्य नहीं हूं। प्रभु यदि मुझे पशु बनाना हो तो मेरा कोई बस नहीं चल सकता, बस एक ही प्रार्थना है, अगर जानवर बनाना हो तो नंद बाबा की 9 लाख गायों में से एक गाय बना देना ताकि रोज उस नंद नंदन के साथ वन विहार के लिए जा सकूं। परंतु मेरे कर्म तो बहुत टूटे हुए हैं, शायद मैं पशु बनने के भी योग्य नहीं। आप तो करुणा निधि है, यदि आपको मुझे पक्षी बनाना हो तो प्रभु मुझे पक्षी का जन्म देना हो तो यमुना के तट पर जो कदम्ब का वृक्ष है ना उस पे पक्षी बना देना ताकि जब वो यमुना में स्नान करने के लिए आए तो मैं उन्हें देख सकूं। मगर मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पक्षी का जन्म दोगे क्योंकि मेरे पापों के कारण मैं पक्षी बनने के योग्य भी नहीं हूँ। तो यदि मुझे पत्थर भी बनाना हो तो गिरिराज गोवर्धन का एक पत्थर बना देना ताकि जब कृष्ण वहां पर गैया चराने आए तो मैं उनका नित्य दर्शन कर सकूं। परंतु जन्म देना हो तो ये न के न प्रकार वही देना जहां मैं कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकूं। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड निर्वय रहा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भक्त प्रत्येक से यानी कि जितने भी लोग हैं उनसे मैत्री भाव रखता है, इसीलिए यहाँ उसे निर्वय कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है, फलतः वह इस प्रणाली को कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। यानी कि उनका सिर्फ एक ही कार्य होता है कि वो किस तरह से सारे लोगों को कृष्ण भावना के बारे में बताए, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों के विषय में बताए, क्योंकि जानता है कि समस्त प्राणी मात्र का कल्याण केवल कृष्ण की शरण में जाना होता है। तो फिर वो किसी से वैर नहीं रखता। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त हरिदास उदाहरण जो है जीसस क्राइस्ट का है। नाना जीसस क्राइस्ट ने बहुत सारे कष्ट सहे, उन्हें अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। निसंदेह यह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। कितना उनके ऊपर कष्ट, प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी ने कौन सा ऐसा कष्ट था जो नहीं दिया। हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में कोड़े मारकर पिटवाया गया, लेकिन फिर भी वो यही कहते रहे, खंड खंड है बे शरीर, या चाहे तन से प्राण, तब हो ना आमी ना छोड़े वदने हरि नाम। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे मुझे आप मार डालो, लेकिन फिर भी मैं कृष्ण का नाम लेना कभी भी बंद नहीं करूंगा। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे, और यह कठिन कार्य है। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण कष्ट भोग रहा है। हम यहाँ पर कष्ट अपने कर्मों के अनुसार तो भोग ही रहे, लेकिन इसका मेन मकसद क्या है? हमने ऐसे कर्म किए क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने कृष्ण के साथ जो हमारा मूलभूत संबंध है, जो इटर्नल हमारा कृष्ण के साथ रिलेशन है, उसको भूल जाते हैं और इस शरीर से अपने आप को देहात्म बुद्धि में ग्रस्त कर देते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, और जिनके परिणाम के स्वरूप हमें कष्ट भोगना पड़ता है। वजह तो केवल इतनी ही है ना कि कृष्ण से अपने संबंध को भूल गए। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। यानी कि भक्त बनने के बाद हमें सिर्फ एक ही कार्य करना चाहिए, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये कृष्ण उपदेश, ये श्रीमद् भगवत गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र के लिए कहा। यानी कि जो हम सब जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, तो इसमें ही हमारे लिए उपदेश है। तो हमें जो भी हमारे संपर्क में है, हमें उन्हें श्रीमद् भगवत गीता के विषय में बताना चाहिए और भगवान के विषय में बताना चाहिए। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के संकटों को सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुजी विष्णु रूप को भी दिखाया है। यानी कि इस अध्याय में हम लोगों ने जो जो देखा है, वो श्री प्रभुपाद जी अभी सारभूत हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले तो भगवान ने विश्व रूप दिखाया, जो कि सब कुछ खत्म करने वाला है, क्षण भंगुर है लेकिन फिर भी, तो और उसके बाद चतुर्भुजी विष्णु रूप दिखाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त रूपों के उद्गम है। यानी कि ये सारे किसके रूप है? कृष्ण के ही, कृष्ण उद्गम है, कृष्ण स्रोत है, कृष्ण से ही निराकार ब्रह्म है, कृष्ण से ही विश्व रूप है, कृष्ण से ही चतुर्भुजी रूप है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। यानी कि ऐसा नहीं कि स्टार्ट में विश्व रूप है या चतुर्भुजी रूप है, उनमें से कृष्ण निकले। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम, कृष्ण जो कि ब्रजेंद्र नंदन द्विभुज रूप है, उन्हीं वही सब बाकी सारे अवतारों का, बाकी सारे रूपों का मूलभूत स्वरूप है। वे समस्त रूपों का उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, कारण दक्षाय विष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु, कारण दक्षाय विष्णु के श्वास लेने से जब करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं तो हर एक ब्रह्मांड में गर्भ दक्षाय विष्णु और क्षीर दक्षाय विष्णु होते हैं, तो विष्णु तो करोड़ों हैं, बहुत सारे हैं, तो लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना के मूल द्विभुज श्याम सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकता है। प्रेम मंजना चरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेमंजना चरिता, जिन्होंने अपने अपने नेत्रों पर प्रेम का अंजन लगाया हुआ है, ऐसे संत नेत्रों पर तो प्रेम का अंजन लगाते हैं लेकिन हृदय में, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय के नेत्रों से उस कृष्ण को देखते हैं और कुछ भी नहीं देखते, और कुछ देखना चाहते हैं ना देख सकते हैं। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का स्वरूप, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण द्विभुज रूप में है, साक्षात व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय यानी विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव जपिए और खुश रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।